आज हम सभी के सामने डॉक्टर प्रेम मसंत उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रेम मसंत जी, आप यहां पर मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर के रूप से हैं। आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आपने यूके और अमेरिका में बहुत भ्रमण किए हैं और साथ साथ आपने करीबन 5000 से भी अधिक अपने लेक्चरों से आत्माओं को लाभान्वित किया हुआ है। आप स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स सभी आत्माओं को देते हुए लाभान्वित करते हैं। तो आज हम सुनेंगे डॉक्टर प्रेम मसंत जी को।
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। आज का जो विषय है कि कैसे हम अपने लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में अपना बैलेंस बनाकर रखें, कैसे हम सिचुएशन से प्रभावित ना हो जाएं, फीलिंग तक ना आ जाएं। फील जरूर करें पर इतना फीलिंग तक ना आ जाएं जिससे कि ब्लड प्रेशर, अल्सर, हार्ट अटैक, डायबिटीज हो जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी अभी क्लियर होता जा रहा है कि बीमारी का कारण केवल एक फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। हम सभी के अंदर जीन्स रहते हैं, जेनेटिक इनबिल्ट मैकेनिज्म हम अपने पेरेंट्स, फोर फादर्स से इनहेरिटेट करते हैं, पर अभी ये देखा जा रहा है कि जीन्स के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो बीमारी को जल्दी एक्सप्रेस करते। एक सिंपल सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा, जिस डॉक्टर ने बहुत अच्छा रिसर्च किया जीन्स के ऊपर, उसने कहा जीन्स आर लोडेड गन्स, लाइफस्टाइल इज द ट्रिगर। जीन्स आर लोडेड गन्स, लाइफस्टाइल इज द ट्रिगर। इसका अर्थ, अगर ये टॉर्च लें, इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो जीन्स हैं, पर इसका जो ट्रिगर है, बटन है, वो मेरे हाथ में है। जब तक मैं इसको दबाऊंगा नहीं, लाइट ऑन नहीं होगी। इसी तरह से हमारे अंदर भी बॉडी में जो जेनेटिक मेकअप है, चाहे मैंने डायबिटीज के जीन्स लिए हैं, हार्ट डिजीज के लिए हैं, उनका भी एक्सप्रेशन, म्यूटेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है। इसलिए जो फ्यूचर की मेडिसिन अभी WHO ने प्रेडिक्ट कर रहा है, आने वाले समय में मेडिकल सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। क्यूरेटिव के साथ साथ प्रमोटिव और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हेल्थ का बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें भी अपने लाइफ में उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रिगर न होने दें। अब आती है बात स्ट्रेस की। आराम से खाया, लेक्चर का तो स्ट्रेस नहीं था, क्लासेस का तो स्ट्रेस नहीं है ना आपको कि बहुत क्लासेस चल रही हैं, इसलिए अभी क्लास नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि क्लासेस तो आपने बहनों से काफी PhD की सुन ली होंगी, तो अभी अपन केवल इस जन्म के लिए कैसे ठीक रहना, बहुत चीजें छोड़ दें, केवल इस मुद्दे पे सोचेंगे कि इस बर्थ में हम अपने को कैसे ठीक रखें। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था पेपर में, एक बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट ने बॉम्बे की टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, आर्टिकल कंबाइंड था गायनोकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का। विदाउट नाम देते हुए उन्होंने टाइटल दिया था न्यू एज कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यू एज कॉन्ट्रासेप्टिव यानी फैमिली प्लानिंग का नया तरीका, उसमें उन्होंने हाईलाइट दिया था स्ट्रेस। एक फैमिली का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता था। शेयर मार्केट में आप सभी जानते हैं मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, रोज इंडेक्स चेंज होता है, कभी डाउन होता है कभी ऊपर चढ़ता है। इसकी जो फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, इनको कोई बच्चा नहीं था, स्टरिलिटी थी। इन्होंने काफी चेकअप कराया, सब चेकअप नॉर्मल निकले, कोई पैथोलॉजिकल रीजन नहीं था। अल्टीमेटली जब धीरे धीरे उससे कंसल्टेशन साइकेट्रिस्ट ने भी किया, तो उसने देखा इस व्यक्ति का क्या होता था, जैसे ही वो घर आता था, रोज जो मार्केट में अप डाउन होता था उसके बॉडी में भी अप डाउन होता था, ब्लड प्रेशर में, कुछ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में, मैं उनका नाम नहीं दे रहा हूं, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में भी अप डाउन होता था। फिर इन लोगों ने सोचा इसको कहीं यहां से बाहर भेज देते हैं। उन्होंने उनके एडवाइस मान ली, कपल ने उसको फोर्सली लीव पे भेजा, छुट्टी बिताने भेजा, हॉलीडे बिताने भेजा, और एक महीना वो हॉलीडे बिताकर आए और लेडी ने कंसीव कर लिया, प्रेगनेंसी हो गई। क्या हुआ, जो रोज की हमारी दिनचर्या है, जो रोज हमारे सामने सीन्स आते हैं, उनका जो इफेक्ट हमारे माइंड और बॉडी पर आता है, और उसके कारण बॉडी के पैरामीटर्स भी चेंज होते रहते हैं। इसीलिए 21वीं सदी में जीना है, सरवाइव करना है, तो हमें भी बहुत टफ बनना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। जैसे कि एक्सरसाइज जरूरी है, आज मस्ट है, हर एक के लिए मस्ट है, इसी तरह से अब ये भी हो गया मेडिकल साइंस में, मेडिटेशन भी मस्ट है। मैं रिलीजियस बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा हूं, अपने अपने बिलीफ सिस्टम जो भी है आपके वो फॉलो करो, पर मेडिटेशन इज एंटायरली डिफरेंट, वो मेडिकल साइंस में भी अभी आ गया है, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। मैं एक रियल वर्शन से स्टार्ट करता हूं। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसोफर था। कन्फ्यूशियस वॉज ए वेरी फेमस चाइनीज फिलोसोफर। जब वो अपने लास्ट समय पर था, तो उसके आसपास उसके फैमिली के सभी मेंबर्स बैठे हुए थे। उसने एक मेंबर से पूछा, व्हाट इज देयर इन माय माउथ, तो उसने कहा टंग। फिलोसोफर ने पूछा, व्हाट इज देयर इन योर माउथ, उसने कहा टंग एंड टीथ बोथ। वो यंग था फिलोसोफर, लास्ट पे था। फिलोसोफर ने कहा, देखो जब हम पैदा होते हैं टंग पहले आ जाती, टीथ बाद में आते हैं, पर जब हम इस दुनिया से जाते हैं टीथ पहले चले जाते हैं, टंग रह जाती है। तो मेरा मैसेज तुम्हारे को यही है, इफ यू वॉन्ट टू लिव ए गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, बी सॉफ्ट, फ्लैक्सीबल, जेंटल, लाइक टंग। पर अब 21वीं सदी में मैं और जोड़ देता हूं, बी टफ इन योर माइंड एंड सॉफ्ट इन योर आउटसाइड। हमारे दोनों डिजाइन जो की गई है बॉडी की, सोल, ब्रेन, बॉडी, इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें। हमारी बॉडी अगर हम देखें बाहर से कैसी बनाई गई है, फ्लेक्सिबल, जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं, यहां से लेके चले नेक, शोल्डर, बैक, नी, सब फ्लेक्सिबल, इलास्टिक। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने को मूव कर सकते हैं, आगे देख सकते, पीछे देख सकते, सब जगह देख सकते, फ्लेक्सिबिलिटी। और अंदर जो माइंड बिठाया है उसमें टफनेस चाहिए। जितना हम बाहर से फ्लेक्सिबल होंगे और अंदर से टफ होंगे उतना हमारी हेल्थ अच्छी होगी। एक बहुत अच्छी चाइनीज कहावत है ताओ की, वट एवर इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, वट एवर फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, वट एवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। यानि जो चीज जितनी फ्लेक्सिबल है फ्लोइंग है वो बढ़ती जाती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा वो खुद ही बढ़ेगी। आप एनिमल किंगडम भी देख लो, बर्ड्स को देख लो, एनिमल को देख लो, उनको कुछ नहीं। और जो चीज रिजिड और सख्त है वो चीज खत्म हो जाती है। इसीलिए रिजिडिटी कब आती है ह्यूमन बींग में, जब आदमी चला आत्मा चली जाती फिर क्या कहते हैं बॉडी को ले जाओ। पहले क्या था, पेशेंट को अंदर लाओ, उसको हार्ट अटैक हुआ, थिएटर में डेथ हुई, तो डॉक्टर क्या कहता है बॉडी को ले जाओ। यानी क्या फर्क आ गया, वो जो लिविंगनेस था अलाइवनेस था वो चला गया, तो अब क्या आ गया बॉडी स्टिफ हो गई रिजिड हो गई। पर क्या होता है हम अपने जिंदगी में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी वो अलाइवनेस फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जाती है। इसलिए जब बचपन में होते हैं बहुत अलाइव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने कवर्स पहनना चालू कर देते हैं, अपने व्यक्ति हर व्यक्ति अपने अपने कवर पहनना शुरू कर देता है। इसीलिए कभी कभी रिलीजियस बिलीफ भी एक कवर हो जाती है, कवरिंग चालू हो जाती है, मैं ये हूं टाइटल लेबल सीए, तो व्यक्ति उसमें रिजिड हो जाता है और उसी के कारण बॉडी में स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। हेल्थ का अर्थ है, हेल्दी का अर्थ है हील डाई, हेल्दी मींस हील डाई। आप अपने को हील कर सकते हो। स्वास्थ्य का अर्थ है सो मींस सेल्फ, आस्था मींस मैं अपनी सीट पर सेट हूं, बिलीफ मेरा अपने प्रति बिलीफ कॉन्फिडेंस। स्व सेल्फ आस्था मींस बिलीफ सीट पर सेट हूं, मैं जब अपनी सीट पर सेट हूं तो बॉडी भी काम ठीक से कर रही है। आयुर्वेदा में कहावत है पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, ये बहुत पहले की बिलीफ है, पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा। पांव क्या है हमारे सेकंड हार्ट है, काफ मसल्स जो हैं ये हमारे सेकंड हार्ट है, ये जितना अच्छी तरह काम करते हैं ब्लड वापस हार्ट में आता है, वीनस रिटर्न होता है। जितना हार्ट में पंपिंग अच्छा होगा ब्लड ऑक्सीजन मिलके पूरे बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा, ग्लूकोज अच्छा होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो ये सेकंड हार्ट है। इसीलिए कहते हैं पांव गर्म पेट नरम। जितना हमारे इंटेस्टाइन है स्टमक है जितना खाना अच्छी तरह खाएंगे शांति से खाएंगे उतना अच्छा डाइजेस्ट होगा और ये सॉफ्ट रहेगा। तीसरा हमारा ब्रेन, ब्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे बॉडी को गवर्न कर रहा है, सेंटर्स हैं। जितना ये कूल रहेगा आत्मा डिसीजन अच्छा लेगी और हम अच्छी तरह काम कर सकेंगे, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम अच्छी तरह काम करेगा। पर एक डॉक्टर ने कहा कि आज का व्यक्ति उल्टा हो गया है, 21st सेंचुरी में पांव हो गए हैं ठंडे, पेट हो गया है टाइट, सिर हो गया है गर्म। उसने थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में बोला, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, उसने कहा पीपुल आर बिकमिंग न्यूरोटिक, इफ दिस फेस विल कंटिन्यू पीपुल विल बिकम साइकोटिक। व्हाट इज न्यूरोटिक, One who is making castles in air is neurotic. And what is psychiatrist? Psychosis? One who is living in that castle is psychiatric. And what is psychiatrist? One who is taking the rent for living in that castle is psychiatrist. Yane, aadmi paon se nahi bhag raha hai, mind se bhag raha hai. Isliye teeno mein harmony chahiye. जो भी आप यहां सीख रहे हैं उसका टोटल इसेंस यही है, हेड हार्ट हैंड, तीनों में हार्मोनी हो जाए। जहां कहीं डिसहार्मोनी है, सोच कुछ रहा हूं, बिलीव कुछ कर रहा हूं, कर कुछ रहा हूं, तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। पर तीनों में अगर हार्मोनी आती जाएगी, वो ही सोचा, वो ही बिलीव किया, वो ही करा जो इस समय मुझे जरूरी है, तो जो माइंड का भागना है वो कम हो जाएगा। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसके दोनों कान जल गए थे। तो डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ, तेरे दोनों कान कैसे जल गए? तो उसने कहा, मैं प्रेस कर रहा था और मेरे पास मोबाइल फोन पड़ा हुआ था, घंटी बजी मोबाइल की, तो मैंने प्रेस उठा ली, फोन को नहीं उठाया और उससे आंसर दिया, तो एक कान जल गया। बोला, दूसरा कान कैसे जल गया? बोला कि फिर से घंटी बज गई और फिर से मैंने प्रेस उठा ली। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम मेंटली प्री ऑक्यूपाइड बहुत रहते हैं, और पर्टिकुलरली मैंने देखा जब से ये मोबाइल आ गया, व्यक्ति और प्री ऑक्यूपाइड हो गया। अब उसको लगता है ये मेरे हाथ में नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, वो उसको पकड़ के ही चलता है। अब ट्रेन में भी जहां रिलैक्सेशन होता है, अभी मैंने देखा हमारे यहां भी लोग लाने लग गए, अब क्लास में बैठे हैं, स्पिरिचुअल की क्लास सुन रहे हैं, वहां भी अगर आप इसको लेकर पकड़ के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति डर रहा है अपने से। पकड़ता कौन है? जो डरता है। इसीलिए कहा गया, वट एवर इज फ्लेक्सीबल एंड फ्लोइंग। हमारे जितने भी देवी देवता बताए गए, कैसे बताए गए? लक्ष्मी को भी कैसे बताया? आपने देखा कभी किसी मंदिर में किसी देवी देवता को ऐसा? ये कब करता है व्यक्ति? जब कहीं डर रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, उसको अगर डर लगेगा तो वो क्या करेगा? मां को पकड़ लेगा। इसी तरह से हम भी जब अपने माइंड में कहीं डरते हैं, फ्यूचर का डर, क्या होगा उसका डर, तो हम क्या करने लगते हैं? पकड़ना शुरू करते हैं। इसीलिए करप्शन, एक्यूमुलेशन, पजेसिवनेस क्यों कॉमन हो गया सोसाइटी में? यहां जितना ब्लॉक करेंगे, डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने बहुत अच्छी चीज कही, मुझे अच्छी लगी, करेंसी इज करंट। करेंसी मींस ग्रीक में, लैटिन वर्ड में करंट। करंट इज गुड व्हेन इट इज फ्लोइंग, लाइट तभी जल रही है। इसी तरह से शरीर में भी सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट कंटिन्यूस पंप कर रहा है पैदा होने से ही, 24 घंटे में ब्लड कई थाउजेंड माइल्स ट्रेवल कर लेता है। ब्लड जब तक चल रहा है तो हेल्थ अच्छी। अब जैसे ही ब्लड स्टैग्नेंट होना चालू होता है, क्लॉट फॉर्मेशन चालू होता है, एथरोस्क्लेरोसिस चालू होता है, ब्लॉक चालू हो जाता है। इसीलिए जिनके यहां छापे पड़े सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, तो वो अपनी बाईपास सर्जरी करा रहे थे कहीं। क्यों बाईपास करा रहे थे? क्योंकि करेंसी को ब्लॉक कर रहे थे। जितना ब्लॉक यहां करेंगे उतना ब्लॉक यहां होगा। दैट इज वाई सीएडी इज बिकमिंग नंबर वन किलर इन सोसाइटी। आज शहर में रहने वाले व्यक्ति को नंबर वन किलर पूरे वर्ल्ड में हृदय रोग की बीमारी हो रही है, जिसको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। आप लोग सुनते होंगे, कई लोग हाई लेवल वाले बात भी करते हैं, मेरे को सिंगल वेसल ब्लॉक, मेरे को टू वेसल ब्लॉक, कोई कहता है मेरे को थ्री वेसल ब्लॉक, आजकल ये भी स्टैंडर्ड है। अगर सिंगल वेसल ब्लॉक है तो आप बहुत पुअर हैं, गरीब हैं। थ्री वेसल ब्लॉक है, रिच हैं। एंजियोप्लास्टी कराई, पुअर हैं। बाईपास कराया, स्टंट डलवाया, रिच हैं। तो ये भी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हो गया है। और हम सभी जानते हैं आज इंडियंस में सबसे कॉमन जो बीमारी होने के चांसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, ये वेल प्रूव्ड स्टडी के फैक्टर्स बता रहा हूं। इंडियंस आर प्रोन टू गेट कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड डायबिटीज 6 times मोर कंपेयर टू यूएसए, चाइनीज, जापानीज। इंडियन व्यक्ति को इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर हमने अपने को चेंज नहीं किया तो आने वाले 2010 और 15 तक इंडिया में सबसे ज्यादा मरीज हृदय रोग के, डायबिटीज के हो जाएंगे। इंडिया विल बी द कैपिटल इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हम सबसे ज्यादा उसमें लीडिंग हो जाएंगे। 100 में से 60 मरीज इंडिया से निकलेंगे, रिच, यानी एक रिच होने की निशानी है। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा, आज का व्यक्ति आधा टाइम, हाफ ऑफ द लाइफ, ही स्पेंड इज हेल्थ टू अर्न द वेल्थ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ ही स्पेंड वेल्थ टू अर्न द हेल्थ। आधी जिंदगी हम खूब 50 साल तक भागते रहते हैं, भागते रखते हैं कि लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, वनडे मैच खेलना चाहते हैं। और 50 साल के बाद जब सब आ जाता है, वही पैसा हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लगता है। इसलिए क्यों नहीं हम शुरू से अपने ऊपर अटेंशन रखें। तो आज के समय में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव करेगा, कोई भी व्यक्ति तभी सर्वाइव करेगा जब उसमें मेंटल टफनेस है, ऑटोनॉमी है, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्रिएटिव है, कॉन्फिडेंस है, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी रियल स्टोरी आई थी, कैसे व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है पर वो व्यक्ति कितना समझदार था। एक जर्नलिस्ट बस्तर में ट्रेवल कर रहा था, जगदलपुर एमपी का एरिया, ट्राइबल एरिया है, बोट से इस पार से उस पार जा रहा था। बोट चलाने वाला एक आदिवासी व्यक्ति था, ट्राइबल व्यक्ति था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, रोज आप कितना कमा लेते हो? उसने कहा 20 रुपए। फिर उस जर्नलिस्ट ने कहा, देखो उस साइड ब्रिज बन रहा है गवर्नमेंट का, लोग ब्रिज से जाना शुरू कर देंगे तो आपकी रोज जो कमाते हैं वो कमा नहीं पाएंगे। तो उस ट्राइबल मैन ने भी बड़ा अच्छा आंसर दिया, देखो भगवान बना रहा है ब्रिज लोगों को फायदे के लिए, मैं कुछ और धंधा कर लूंगा। अब आप देखो स्ट्रेस कैलकुलेशन के हिसाब से, इट इज अ जॉब स्ट्रेस, यू आर लूजिंग योर जॉब। जॉब स्ट्रेस को माना गया लेट अस से 80% 90% पॉइंट्स, 100 में से 100 पॉइंट उसको देते हैं जिसकी कोई नियर एंड डियर की डेथ है, तो उसको 100% देते मार्क। अब जॉब लूज कर रहा है, जॉब उसके पास नहीं है, पर वो व्यक्ति एक सिंपल बिना एजुकेशन किया हुआ बोलता है, मैं कुछ और कर लूंगा। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को देखो, एक जगह गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और वो 3 साल से प्राइवेट हो गया। जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो गया, वहां से काफी लोगों को हार्ट डिजीज, डायबिटीज के केसेस बढ़ने लगे। जब वहां गए, अंदर देखा, तो क्या बोला वो टॉप कैडर ने और मिडिल कैडर ने, अभी तक गवर्नमेंट जॉब था, सिक्योरिटी थी, 8 घंटे में से 3 घंटे काम करना पड़ता था और 6 लोग हमारे साथ थे। अब प्राइवेट हो गया, 8 घंटे काम करना है और एक व्यक्ति साथ में है, सिक्योरिटी नहीं है। अब सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी कहां से आई? उस व्यक्ति को क्यों नहीं आई इनसिक्योरिटी? क्योंकि पहला इमोशन, पहला बिहेवियर पैटर्न हर व्यक्ति को लाइफ में क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान के बाद सिक्योरिटी। मेरे को रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अब मैं क्या करूंगा? मकान बनाऊंगा, अच्छा जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश करूंगा, सिक्योरिटी। पर बाहर के देशों में देखें, कोई जॉब गवर्नमेंट का नहीं होता, प्राइवेट होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, तभी भी किसी को हटा दिया जाता है। तो ये क्या है? हमारे खुद के माइंड का एक प्रोडक्ट है सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, हम खुद में ही पैदा करते हैं। और बल्कि कई लोग जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे लोग, उन लोगों को मैंने देखा, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। एक कलेक्टर से पूछा, आपने क्यों रिजाइन किया, आईएएस ऑफिसर से? उसने कहा, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब, सेम जॉब सेम थिंग, उसकी सुनो इसकी सुनो, बस वो करो, अपने अंदर की तो कुछ नहीं कर सकते। विदिन 10 days ही वॉज हायर्ड बाय वन बिग कंपनी एंड ही वॉज गेटिंग मोर सैलरी देन वॉट ही वॉज गेटिंग एज आईएएस ऑफिसर। तो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी कहां से आई? हमारी खुद की ही प्रोडक्ट होती है। जितना आदमी डरता है उतना उसमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। पर जैसे जैसे हमारा डर खत्म होता जाएगा, हमारा फ्लोइंग नेचर चालू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा, डर वाला क्या करता है? पकड़ता है, पकड़ता है, पकड़ता, छूट नहीं जाए। और जबकि गीता ने कहा, विवेकानंद ने कहा, डू नॉट कंट्रोल द लाइफ। एक बहुत अच्छा फिलोसोफर था एपिसीटस, ग्रीक फिलोसोफर, उसने 1st century में कहा, ऑल अनहैप्पीनेस अराइज, ऑल अनहैप्पीनेस अराइज इन ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन ओवर विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। हर व्यक्ति दुखी कब होता है? जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बच्चों को, हर चीज को, व्यक्ति को। और इस लाइफ में कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। गीता ने कहा, डू नॉट कंट्रोल द लाइफ, बिकम द मास्टर ऑफ द माइंड। आप कंट्रोल मत करो, अब मैं कंट्रोल करूं कितनी देर करूंगा, ऐसा 1 घंटे बाद क्या होगा? इस पोजीशन में मैं कर सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं। हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ, नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। दूसरा तनाव का कारण, हम सब सोचते हैं डर का कारण, जब मेरे पास ये आ जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, पड़ोसी का ये बंद हो जाए, ये हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, तब मैं खुश होऊंगा। पर वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? कुछ बीमारी हो गई, ये हो गया, अब मैंने जो किया वो भी इंजॉय नहीं कर सकता। इसलिए एक व्यक्ति के पास बहुत धन था, उसकी 6 पीढ़ी खा सकती थी, फिर भी चिंता में वो घूमता रहता था। लोगों ने पूछा, सर आप क्यों चिंता में, आपके पास तो 6 पीढ़ी तक का पैसा है। आई एम वरिड फॉर 7 generation, 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। तो प्रेजेंट को मैंने इंजॉय नहीं किया, तो उसकी जगह फ्लो को एंजॉय करो, फ्लो को एंजॉय करो। स्पिरिचुअलिटी यही सिखा रही है, गिविंग एंड रिसीविंग। जो चीज आई है इसका सिंबल क्या है? जो आएगा वो जाएगा। रिसीविंग एंड गिविंग, हेल्थ भी अच्छी रहेगी जब मेरे हीलिंग वाइब्रेशन फ्लो कर रहा। बीमारी क्यों हुई? दिस ईस, दिस ईस, दिस ईस का अर्थ क्या हुआ? जब मैंने अपने ईस नेचर को छोड़ दिया, दिस ईस जोड़ दिया, लिव इन ईस, ईट इन ईस, स्लीप इन ईस, आराम से खाओ आराम से रहो। पर अभी क्या कर दिया? दिस जल्दी 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 जल्दी। तो ये एनर्जी का वाइब्रेशन, हीलिंग वाइब्रेशन का फ्लो भी बंद हो गया। तो पहली चीज है, एंजॉय द फ्लो। तो स्ट्रेस क्या है? एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टर्म है। स्ट्रेस कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। फिजियोलॉजी में, मेडिकल साइंस में ये आया कि जब कभी भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है बाहर से अंदर से, तब हमारा शरीर माइंड उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। अब जैसे मैं जा रहा हूं, स्टेशन जा रहा हूं, सामने देख रहा हूं कि ट्रेन छूट रही है, विसिल दे दी, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? दौड़ूंगा। तो मेरा बॉडी मैसेज क्या जाएगा बॉडी में? इसको गाड़ी पकड़ना है। तो हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा, ज्यादा ब्लड देगा। मसल्स में क्या आ जाएगा? ब्लड फ्लो ज्यादा आ जाएगा। तो मैं ताकत से उसको पकड़ लूंगा। और जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? सब नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल फिनोमेना। बच्चा कब इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, पढ़ाई पढ़ेगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा, अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करेगा, एग्जाम खत्म होगा, नॉर्मल होगा। 100 मीटर डैश करना है, ब्लड यहां आया, पूरी ताकत से भागा, ब्लड यहां आ गया, रेस खत्म हुई, नॉर्मल हुआ। सो दिस इज ए नॉर्मल फिनोमेना। जब कभी भी हमारे सामने आती है, बॉडी हमें मदद करता है। एक और प्रॉब्लम है, सीधा करना, स्ट्रेस खराब कब बन जाती है? जब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। डिमांड ज्यादा है और रिसोर्सेस नहीं है, दैट स्ट्रेस बिकम डिस्ट्रेस। बट इफ यू हैव ए गुड रिसोर्सेस, दैट स्ट्रेस विल बिकम यू स्ट्रेस। मजा आएगा। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने अच्छी बैटिंग सीख ली है, तो आपको मजा नहीं आएगा सिक्सर मारने के लिए, क्योंकि जब आप सिक्सर मारेंगे पब्लिक उठकर ताली बजाएगी। एक एक रन बना रहे हैं, कोई नहीं, लोग सो जाएंगे। इसीलिए लाइफ में चैलेंज आना मजेदार चीज है। भगवान क्यों चैलेंजेस देता है? सिक्सर मार। अर्जुन को भी प्रॉब्लम आया, भाग रहा था, तो श्री कृष्ण ने क्या किया? लड़ना तो है तुझे, भाग नहीं सकता। तो हमारे रिसोर्सेस को बढ़ाएं, तनाव से घबराए नहीं। इसीलिए एक व्यक्ति जिसने इसको निकाला था शब्द को, डॉक्टर हैंसले। डॉक्टर हैंसले से एक व्यक्ति ने पूछा, सर मुझे जीवन में ऐसी मेथड सिखा दो कि जीवन में कभी तनाव ना आए। उसने कहा, अच्छा कल आ जाना, मैं तेरे को ले चलूंगा। डॉक्टर हैंसले उसको अगले दिन शमशान में ले गया, ग्रेवयार्ड में। बोला, यहां आकर सो जा, यहां तनाव नहीं है, वहां जीना है तो है। यानी शमशान में भी, अभी तो वो पुरानी चीज थी, उस समय 1928 1930 की बात थी, अभी तो शमशान में भी टेंशन हो गया है। अभी बड़े शहरों में, जर्मन में तो पहले से ही आपको बुकिंग करना पड़ती है, किस तरह का आपका कास्केट चाहिए, कौन आपका सेरेमनी करेगा, लोग पहले ही पैसा दे देते हैं, मेरे को फोर्थ फ्लोर चाहिए, मेरे को एसी फ्लोर चाहिए बाद में। तो अभी वो भी टेंशन चालू हो गया, वहां भी वो नहीं है। हमें जीना है तो अपने अंदर के माइंड को ही, रिसोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। सिचुएशन से घबराना नहीं है। सिचुएशन तो हर व्यक्ति को 21वीं सदी में कहीं भी किसी को आ सकती है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है, चाहे मैं भी हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो स्पिरिचुअलिस्ट है, चाहे मेडिटेशन करने वाला है, सबको प्रॉब्लम आते हैं। पर उस प्रॉब्लम को आप कितना अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, वो तरीका आपको आना है। नेक्स्ट। कई लोग तनाव देते हैं। इंडिया में कई लोग मास्टर हैं, उनका काम रहता है दूसरे को ट्रांसफर कर देना। तो एक व्यक्ति था, उसका किराए का मकान था, ऊपर मकान मालिक, नीचे किराएदार, हस्बैंड वाइफ रहते थे। हर पहली तारीख को ये किराया दे देते थे मकान मालिक को, इनका रिकॉर्ड अच्छा था। एक बार क्या हुआ, इनके पास पैसे नहीं थे, तो एक तारीख आ गई, अगले दिन एक तारीख थी, रात का समय था, तो हस्बैंड बड़ा टेंशन में कि क्या करूंगा, कल कैसे पैसे दूंगा, घूम रहा था, नींद नहीं आ रही थी। वाइफ ने कहा, अरे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। वाइफ गई ऊपर, दरवाजा खटखटाया, मकान मालिक को बोला कल हम पैसा नहीं दे सकेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, के वापस आ गई। ये दोनों सो गए, अब मकान मालिक चिंता में घूमने लगा। कभी कभी हम अपना स्ट्रेस दूसरों को ट्रांसफर करते हैं, हम वो ना करें। अगर हमारे को स्ट्रेस है खुद को ठीक रखें, नहीं तो हमारा नेचर होता सामने वाला, मैं गया ऑफिस में मेरे को हेडेक हो रहा है, सामने देखा हूं सब लोग बड़े मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेरे को ही सिर दर्द हो रहा है, तो मुझे मजा नहीं आएगा, तो क्या करूंगा, एक के पास जाऊंगा, बहुत सिर दर्द हो रहा है, दूसरे के पास गया, बहुत सिर दर्द हो रहा है, धीरे धीरे सबके पास गया, सबको सिर दर्द होने लगा, अब मजा आया, ठीक है अभी मैचिंग ठीक हो गई, हम उसको मैनेज करें। स्ट्रेस में क्या हो जाता है, बच्चे की बोतल खुद लगा दी और बच्चे में सिगरेट दे दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते चल। तो पहला प्रिंसिपल लाइफ का, एवरीथिंग फ्लोस, बेसिक प्रिंसिपल, एक क्लियर कट प्रिंसिपल मैंने भी अपना, एवरीथिंग फ्लोस, एयर वाटर अर्थ एनर्जी फ्लोस, हीलिंग मीन्स एनर्जी फ्लो, फ्लो चल रहा है, अलाउ इट टू फ्लो। तभी हम लोग कहते हैं अपने को ह्यूमन बींग। ह्यूमन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ह्यूमस, सॉइल, एंड द बींग मीन्स एनर्जी लाइफ फोर्स। व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बींग एंड द डूइंग देन हेल्थ इज मेंटेन। व्हेनेवर इम्बैलेंस इज देयर वी बिकम रोल कॉन्शियस, टाइटल कॉन्शियस, डिस इज स्टार्ट। व्यक्ति की बीमारी तभी चालू होती है जब वो टाइटल लेबल को पकड़ने की कोशिश करता। नेक्स्ट, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपने पास समय लिमिटेड है। ये व्यक्ति बहुत डिमांड अपने से करता है कि मेरे पास सब कुछ आ जाए तभी मैं खुश हूंगा। हर व्यक्ति की अपनी अपनी डिमांड होती है, डिजायर होती है, मेरा वजन कम हो जाए। जिनका ओवरवेट होता है वो टेंशन में ही रहते हैं, जब तक मेरा वजन 10 किलोग्राम नहीं कम हो जाए तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। पर आप आराम से अपने वजन को भी कम करिए और एंजॉय भी करिए, नहीं तो कभी कभी इसमें भी टेंशन हो जाता। अभी रिसेंटली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, यंग लड़की 20 साल की, क्यों किया? वो देखती थी सामने टीवी मॉडल्स को और मॉडल्स का वेट और उसके वेट्स में केवल 1 किलोग्राम ज्यादा था, तो उसको बड़ा टेंशन आया कि मेरा 1 केजी ज्यादा है, कम नहीं कर पा रही हूं, तो सुसाइड कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ओवरवेट भी है तो आप उसको भी इंजॉय करिए, उसको धीरे धीरे आप कम करिए, पर उससे टेंस नहीं हो जाइए। लास्ट 2 सेशन पहले भी एक लेडी मिली थी, उसको भी बहुत अच्छी थी, नॉर्मल उसका था, पर उसको वही कॉन्शियस था कि मेरे को और अच्छा वो करना है, तो उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ कराया, तो उससे काफी उसके साइड इफेक्ट हो गए और अब उसको ठीक करने में उसका पूरा समय जा रहा है। तो भगवान ने हमें जो बॉडी दी इस समय, जो कलर दिया, अच्छा है, उसको ठीक हम वेट को कंट्रोल करें, नहीं तो उस लेडी जैसी हालत हो जाएगी। न्यूयॉर्क में एक लेडी जा रही थी 5th Avenue में, तो ऊपर से आवाज आई, वो 60 साल की लेडी थी, तो ऊपर से आवाज आई कि तू 100 साल जिएगी। तो वो लेडी को बड़ा मजा आ गया, मैं 60 साल की और 100 साल जिऊंगी, 40 साल अभी मेरे पास है। फटाफट गई, कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली, दांत चेंज करा लिए, पूरे नी रिप्लेसमेंट करा दिए, सब चेंज होके यंग होके निकली वो। जैसे ही बाहर निकली एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। भगवान के पास गई, भगवान आपने तो बोला मैं 100 साल जिऊंगी और आपने तो, मैं जैसे ही बाहर निकली आपने एक्सीडेंट कर दिया। भगवान ने कहा सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया, यही कहीं ऐसा हम नहीं कर रहे। दूसरा है जॉब स्ट्रेस। मैं इसलिए हंसा रहा हूं कि आप जितना हंसेंगे आपका हीलिंग अच्छा होगा। आजकल सबसे अच्छा हीलिंग का जो माना जाता है ह्यूमर, जितना आप हंसेंगे आपका डायफ्राम अच्छा काम करेगा, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और हीलिंग अच्छा होगा। जितना ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं एनॉक्सिया रहता है, म्यूटेशन जल्दी आता है और बीमारी जल्दी आती है। इसीलिए देखा जो लोग हंस सकते हैं अच्छी तरह, इजी हंस सकते हैं, वो लोग बीमार कम होते हैं, होते भी हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं जो देख रहा हूं पिछले 10 साल में, लोग हंसना भूल गए हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। कभी कभी हमारे भाई बहन भी कुछ देखता हूं तो सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मेडिटेशन का अर्थ है बिल्कुल सीरियस होकर बैठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन मीन्स इंजॉय। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं आंख बंद करके बिल्कुल टाइट बैठ जाऊं, या मैं सीरियस नहीं होना है, चेहरा बिल्कुल वो हो जाता है। मेडिटेशन का मतलब है मैड्री, टू सी योरसेल्फ, टू टॉक योरसेल्फ। आप अपने से आराम से बात करो, कैसे भी बैठना है बैठो, आप जिसमें एंजॉय कर सकते हो बैठो, एंजॉय करो, नेचर को देखो, भैंस से बात करो, डॉग से बात करो। अभी देखो मैं आ रहा था नीचे से ऊपर, आबू रोड से ऊपर आ रहा था, रस्ते के बीच में भैंस खड़ी हुई थी, मैं सोच रहा था देखो कितना एंजॉय कर रही है, इसको कोई चिंता नहीं। मैंने कहा उसको, मेरे साथ जो भाई चला रहा था, देखो ये सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंटर में खड़ी है, स्टेट मिनिस्टर भी नहीं है, इसको भी नमस्ते चाहिए। हमने कहा नमस्ते, हमें रास्ता दो, हट गई वो, उसको भी वो चाहिए, तो उसको भी एंजॉय करो। देखो बंदर आते हैं, हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, बंदर कैसे करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते रहते हैं, बीच में आएंगे, हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। जितना हम सीरियस होंगे, ये फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी का, बॉडी लैंग्वेज, लिगामेंट टाइट हो जाते हैं, और उसमें ही आर्थराइटिस, स्पॉन्डोलाइटिस, बैक पेन चालू हो। जो व्यक्ति मेरे को कहता है मेरे को ये स्टिफनेस है, स्पॉन्डोलाइटिस है, बैक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, मैं पकड़ लेता हूं कहीं ना कहीं ये व्यक्ति स्टिफ हो गया है, हंसना भूल गया है। इसीलिए आजकल लोग हंसने के क्लब में जाते हैं। अब मैंने देखा वहां जाते हैं, पैसा देते हैं, फिर हंसते हैं जोर से, हा हा हू हू ही, वापस आते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। अरे हंसो तो हंसो ना, घर आके भी हंसो। अब 50 रुपए देकर हंसे फिर वापस आए फिर वैसे हो गए। जब मौका मिले हंसो, सबके सामने नहीं हंस सकते, बाथरूम में जाओ हंसो आराम से, तो आपका ये अच्छा होगा। वो हंसने का गीत ही लगा दो, वो ये जिंदगी प्यार का गीत है, पहले वो लगा दो जिंदगी प्यार का। आपको म्यूजिक भी एक अच्छा हीलिंग है, जब कभी भी टेंशन हो इसको आप अंदर ही अंदर गाना भी। गा नहीं सकते तो ताली तो बजा ही सकते हैं हम।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना।
एक्सरसाइज भी करते जाएं, दोनों हाथ ऊपर करें, नहीं तो नींद आ जाएगी। हाँ हाथ ऊपर करिए, छोड़िए, शोल्डर्स को करिए, गर्दन को करिए, तो जब टेंशन आए, प्रॉब्लम आए, पहली मेथड ये एक हीलिंग एक्सरसाइज है। क्या हो रहा है, जब दोनों मिल रहे हैं एक्यूप्रेशर हो रहा है, हमारा पूरा बॉडी ये दो हाथ में रिप्रेजेंट है, अब मैं टाइट ही रहता हूँ, हाथ जेब में ही रखता हूँ, बीमारी आएगी आएगी। जितना मैं हर सिचुएशन को ताली बजा के हल्का कर देता हूँ, उतना मेरे ब्रेन के दोनों साइड डेवलप होते हैं। ब्रेन में दो लॉजिकल सेंटर्स हैं, लेफ्ट राइट इज अवर इमोशनल्स। दोनों सेंटर बॉडी को गवर्न करते हैं। मेल में लेफ्ट डोमिनेंट रहता है और लेडी में राइट डोमिनेंट रहती है। लेफ्ट क्या करता है, सोचता है, कैलकुलेशन, एनालिसिस, और राइट वाला क्या करता है, सिंथेसिस, प्यार, इमेजिनेशन, केयर। इसीलिए लीडर बनना है, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए गुड लीडर यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट। स्टीवन कोवी ने अपनी किताब में लिखा, 7 Habits ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट। यानी हम नमस्ते क्यों करते हैं इंडिया में? इंडिया में ही नमस्ते करते हैं, यहीं से कल्चर पूरे वर्ल्ड में गया। लेफ्ट लॉजिकल, राइट सॉफ्ट पार्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हेड हार्ट। मैं जब नमस्ते कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं दिल और दिमाग से आपके साथ हूं। बाहर के देश में एक हाथ मिलाते हैं, 50% आपके साथ हूं। इसीलिए भारत का अच्छा है। क्यों हम पांव छूते हैं? मूलधारा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी का फ्लो चालू हो जाता है। सामने वाला भी एनर्जी देता है और मैं अपना भी एक्टिवेट करता हूं। अब आजकल क्या हो गया, लेटेस्ट तरीका पांव पड़ने का, बच्चों का बहुत दर्द होता है, ऊपर से टच कर लिया, हाँ बेटे कोई बात नहीं। इसीलिए गले मिलो। दूसरा हीलिंग आता है गले मिलने से, तीसरा आता है टच से, चौथा आंखों से, आईज से। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसका जो प्रिंसिपल है, आईज से ट्रांसमिट करना। पर बहुत जरूरी है, डॉक्टर भी, अच्छा व्यक्ति भी, लीडर भी, मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो जब हम क्लैप करते हैं, हमारे दोनों फंक्शंस, दोनों हेमिस्फीयर्स का डेवलपमेंट अच्छा होता है। अगर बच्चे को केवल पढ़ाई 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 और उसको कहीं नहीं जाने देते, वो बच्चे की भी पर्सनैलिटी कमजोर बनती है। जो बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, लोगों से मिक्स होता है, उसका दोनों का डेवलपमेंट टोटल होता है। इसीलिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना जरूरी है। नहीं तो मेल मेल पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है, लेडी लेडी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेती है, पर लीडर कौन बना? जब वही किरण बेदी ने लेफ्ट को डोमिनेट कर दिया तो वो लीडर बन गई, वही इंदिरा गांधी ने लेफ्ट को डोमिनेट कर दिया तो लीडर बन गई। दोनों का बैलेंस होना जरूरी। तो अब जॉब स्ट्रेस, जॉब में कहां से तनाव आता है, आप लोग बताइए, बाद में कर लेंगे, आप लिख लेना। हाँ, जॉब में कहां से तनाव आता है? एक तनाव कहां कहां से आ सकता है? घर से, जॉब से, सिचुएशन से, और जो हम चल रहे हैं ट्रैफिक पे, चार जगह से कहीं से भी आ सकते। तो जॉब में देखा गया ज्यादातर व्यक्तियों को तनाव तब आता है जब, इसके पहले वाला, जॉब में मजा नहीं आ रहा है, जॉब वही का वही है। इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मंडे को होते हैं। क्यों होते हैं मंडे को? संडे को एंजॉय किया, मंडे को उठा, वही काम, मेमोरी खुली, प्रीवियस, वही लोग, वही बॉस, वही चीज। क्या जॉब में मजा है? जॉब मोनोटोनस, जॉब डिससेटिस्फेक्शन। पैसा मिल रहा है आपको, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छा टाइटल है, पर अगर आपको जॉब में कोई पूछे नहीं तो क्या होगा? आप टॉप लेवल पे हो और आपको कुर्सी पर रोज आके बैठ रहे हो, सैलरी भी मिल रही है, पर आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, क्या होगा? जॉब में मजा आना शुरू हो जाए, खत्म हो जाएगा। मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरे से कोई क्रिएटिविटी आइडिया ही नहीं लेता है, तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन, जॉब मोनोटोनस। इसलिए कहा जाता है वर्क डोंट किल द पीपल, मिस्टर अब्दुल कलाम ने यहां कहा कार्य किसी को नहीं मारता, इट इज अवर परसेप्शन टूवर्ड्स द वर्क किल द पीपल, कार्य के प्रति आपकी क्या दृष्टिकोण है वो आपको मारता है। इसीलिए जॉब को भी इंजॉय करना सीखें, कन्वर्ट योर जॉब इनटू गेम, लव योर जॉब। कौन लोग टॉप पे पहुंचे? जिन्होंने अपने कार्य को एक गेम के तरह लिया, वो लोग लीडर उस काम के बन गए। चाहे आप वर्ल्ड के कितने भी लीडर्स ले लो, उनका एजुकेशन लेवल कुछ वो नहीं था जो आज के व्यक्ति का है, पर वो लोग उस फील्ड के मास्टर बने बिकॉज दे यूज टू लव देयर जॉब। तो कार्य को प्यार करिए, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, जॉब मोनोटोनस। तीसरा होता है आप क्या कर रहे हो कुछ नहीं मालूम, कर रहे हैं आ रहे हैं, जॉब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, कंफ्लिक्ट है, एम्बिग्युटी है, कोई आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, उससे भी स्ट्रेस आता है। इसलिए लीडर का काम होता है अपने वर्कर्स को कम्युनिकेशन प्रॉपर करे, क्योंकि 30-40% स्ट्रेस का कारण लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसको हमें क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट। अब हाँ, एक पर्सनालिटी जो बीमारी को जल्दी लाती है उसको कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी वाला क्या होता है? बहुत टाइम कॉन्शियस होता है वो, यानी घड़ी के इससे चलता है, एक सेकंड भी अगर इधर उधर हो गया तो बहुत टेंस हो जाता है, बहुत परफेक्शनिस्ट रहता है, हर चीज ठीक तरीके से होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ओवरबियरिंग होता है, हाँ ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, जो मैं कहता हूं वनडे मैच खेलने की कोशिश करता है, भगवान से प्रार्थना करता, भगवान शांति दो पर जल्दी करो, वो बैठ नहीं सकता है। गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी खाली है, कंडक्टर कह रहा है सर बैठ जाओ, नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये व्यक्ति खाते हैं, बात करते हैं, मोबाइल पे बात कर रहा है, टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अब क्या खा रहा है पता ही नहीं, बेचारी वाइफ ने इतना अच्छा खाना बनाया कुछ मालूम नहीं, ऐसे ही जा रहा है, तो बॉडी भी क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको यही नहीं मालूम दाल खा रहा है सब्जी खा रहा है, वो तो बस खा रहा है, खाना भी एक काम हो गया, निपटाओ उसको। तो ये लोगों को हार्ट की बीमारी और डायबिटीज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी पर्सनालिटी, सप्रेसिव पर्सनालिटी। अब कई लोग बेचारे क्या होते हैं, उनका बॉस बहुत टाइट या वाइफ या हस्बैंड टाइट, तो वो क्या होंगे उनकी हालत, अंदर ही अंदर रखते जाएंगे, किसी को बोल नहीं सकते, वाइफ को नहीं बोल सकते, हस्बैंड को नहीं बोल सकते या बॉस को नहीं, तो वो क्या करेगा बेचारा, अंदर ही अंदर करता जाएगा। सप्रेशन डिप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये एक $100 मिलियन का आप स्लोगन ले लो, जो व्यक्ति जितना अपने को अंदर ही अंदर दबाता जाता है, अंदर ही अंदर रखता जाता है, कोई दोस्त नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, मेडिटेशन नहीं करता, अंदर ही अंदर रखता जाता है, स्पोर्ट्स नहीं है, उसको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सप्रेशन डिप्रेस इम्यून सिस्टम, इसलिए ये लोग ही ज्यादातर ड्रग्स लेने के आदि बनते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू। क्यों लेते हैं व्यक्ति, रगड़ता है यहां, मारता है, फूंक मारता है, लेता है। अब यहां क्या है, हमारी लाइफलाइन है, रगड़ रगड़ के खत्म कर देता है अपने को, जल्दी जाने की कोशिश करता है। वो लेता है सिगरेट, तब उसका इग्निशन काम करता है, ताकत आ गई 4 घंटे, फिर निकोटीन की लेवल डाउन हुई, फिर से ली। क्यों हुआ, माइंड उसका काम नहीं कर रहा, इसलिए वो बाहर से लेता है। हार्ड ड्रग क्यों लेते हैं, हार्ड ड्रग लेते हैं थोड़ी देर भूल जाता है, कहां चला जाता मालूम नहीं, नई दुनिया में चला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है, जिसकी पर्सनैलिटी सप्रेसिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वाइफ बहुत टाइट है, बॉस टाइट है, तो वो क्या करता है, बोलने के लिए पहले एक पैग लेगा, दो पैग लेगा, जैसे ही दो पैग गए बोलना चालू कर देता, अब जोर से बोलना चालू कर देगा, कभी कभी इंग्लिश या कोई सी भी संस्कृत भी बोलना चालू कर देता है। क्यों हुआ? उसका कॉन्शियस साइड खत्म हो गया, अब सब कॉन्शियस चालू हो गया। अल्कोहल भी वही लेता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी से दूर जाना चाहता है। सिगरेट वाला धुएं में धुआं अपने में खोया हुआ है, अपने से दूर भागना चाहता है। जो व्यक्ति की पर्सनालिटी सॉलिड रहती है उसको ड्रग्स का सहारा लेना नहीं पड़ता। इसलिए बहुत जरूरी है सेकंड इमोशन सिक्योरिटी के बाद, पहला मैंने बताया सिक्योरिटी, सेकंड इमोशन इज एक्सप्रेशन। ऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइज हाउ यू गिव वेंटिलेशन टू योर फीलिंग्स। मेडिटेशन भी क्या है? हाउ यू गिव वेंटिलेशन टू योर फीलिंग्स। आप किसी को भी बता रहे हो, भगवान को बता रहे हो। इसलिए एक स्टडी में देखा, जो लोग कुत्ते लेकर घूमते हैं, कुत्तों को रोज घुमाते हैं, उनको हार्ट डिजीज कम थी। क्यों कम थी? देखा ये लोग कुत्तों से बड़ा अच्छी तरह बात करते हैं, हाउ आर यू डॉगी, एवरीथिंग ओके, उसको खाना भी खिलाएंगे, ले जाएंगे, हाथ में भी लेंगे, कार में भी ले जाएंगे। दूसरा बोला, कुत्ते को कुछ बोलो तो जवाब नहीं देता, आदमी को बोलो तो काटता है, इसीलिए वो कुत्ते बिल्ली रखते हैं। पर हमें भारत में कुत्ते बिल्ली नहीं रखना है, उनसे एंजॉय करना है। मेडिटेशन का जैसे मैंने बताया, एंजॉय एवरीथिंग, नेचर से, पेड़ से, पेड़ से बात करो, किसी से भी बात करो। हस्बैंड वाइफ भगवान ने क्यों बनाए, शादी क्यों बनाई? मैरिज इज ऑल्सो व्हाट? शेयरिंग, एक्सप्रेशन। इसलिए देखा, जिसकी वाइफ, यह हस्बैंड के लिए अच्छी बात है, जिनकी पत्नियां अपने पति को घर के बाहर छोड़ने आती है काम के समय या जब सेपरेट हो रहे हैं सुबह के समय, और कुछ अच्छे शब्द उसको बोलती है, हैव ए नाइस डे, जल्दी आना, आई एम वेटिंग फॉर यू, और शाम को वापस उसको ग्रीट करती है, उनमें हार्ट डिजीज और एक्सीडेंट कम पाए। अब शुरू में क्या होता है, दो साल तक तो वाइफ बाहर तक जाती है, पांच साल बाद कहते हैं वही रोज ही जा रहा है, वो रोज ही जाता है, बाहर जाना छोड़ देती है। पर हमेशा एक्सप्रेशन करो, नहीं तो अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम है, इतना टाइट है वहां उन लोगों की पोजीशन, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पांच बार दस बार ये नहीं बोले आई लव यू डाइवोर्स हो जाता है। तो इसीलिए वो हर समय ही बोलते रहते हैं आई लव यू। पर हम कम से कम मैरिज को एंजॉय करें, एक्सप्रेस करें, शेयर करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को बताएं। स्ट्रेस का एक पॉइंट हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं, जब फुल लेक्चर लेते हैं 14 आवर का, उसमें एक पेपर देते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये रहता है, आप सप्ताह में कितने दिन एक खाना या नाश्ता गरम फैमिली के साथ खाते हो? जो व्यक्ति तीन या चार बार सप्ताह में इकट्ठा होकर गरम खाना खाते हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल कम पाई जाती है। इसलिए खाने को भी जब बनाए एक दूसरे को शेयर करें। मैरिज इज ए डुएट, व्हेन वन इज सिंगिंग अदर इज क्लैपिंग। मैरिज में कभी ये नहीं होगा कि दो आइडियल व्यक्ति मिल जाएं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं कि शायद दो आइडियल व्यक्ति मिल जाएंगे तब शादी अच्छी होगी। 99% इट विल बी मिसमैच, पर उस मिसमैच को एंजॉय करना ही मैरिज है। जो सोक्रेट ने कहा, इफ यू वांट हैप्पीनेस गेट मैरिड। अच्छी पत्नी मिल गई तो बहुत अच्छा, अच्छी पत्नी नहीं मिली तो सोक्रेट बन जाओगे। तो एंजॉय द डिफरेंसेस। और जब कभी भी एक दूसरे को हम एक्सप्रेस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, 50% स्ट्रेस कम हो जाते हैं। इंडियन स्ट्रेस का मैंने जो मेजर रीजन देखा, घर में रहता है। 90% स्ट्रेस का कारण हस्बैंड वाइफ बच्चे, बाहर का स्ट्रेस वो टॉलरेट कर लेता है, वर्क जॉब स्ट्रेस में वो नंबर वन है, अच्छा है, पर घर के स्ट्रेस में मार खाता है। इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह हमें मैनेज करना आना चाहिए। और उसमें सबसे अच्छा है एक्सप्रेशन, शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, उसमें ईगो क्लैशेस नहीं हो। क्योंकि बाहर के देशों का मेजर डाइवोर्स क्यों होता है? ईगो। हमारे देश में क्या है, जितना आप इजी होकर चलेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे की पर्सनालिटी को फ्रीडम देंगे, तब वो मेंटेन रहता। हमारी दादी हमेशा कहती है हारमोनी का अर्थ क्या है, हार मान ली, हार मानी, यानी एक बोले दूसरे ने कहा ठीक। इसको कहते हैं नॉन जजमेंटल। मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में एक वर्ड और सिखाया जाता है, नॉन जजमेंट। यानी टेंशन का एक रीजन क्या होता है, हम अपने चश्मे से सबको देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू जज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई एटीट्यूड। दूसरा स्ट्रेस का कारण इंडियन फैमिलीज में, हर माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, ये बने। अगर वो नहीं बनते हैं, लड़ाई चालू। मैं पीएचडी हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, आईआईटी ग्रेजुएट हूं, अब मेरे बड़े लड़के से एक्सपेक्टेशन क्या होगा, वो भी वैसा ही बने, उसकी कैपेसिटी नहीं, क्या होगा, उसकी पिटाई चल रही है, पिटाई चल रही है, गेम्स बंद कर दिए, यही करना है, टेंथ के बाद बच्चा साइकेट्रिस्ट की कंसल्टेशन लेना पड़ी। क्यों हुई? मैं अपनी पर्सनैलिटी से उसको झांकने की कोशिश कर रहा हूं, और वो बच्चा क्या कर रहा है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, नहीं जाना, रिबेलियन चाइल्ड। ये क्यों होता है, जब हम फोर्स करते हैं अपनी पर्सनैलिटी से। इसलिए आजकल तो जोक में मैं बोलता हूं, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है बहुत अच्छा है, नेता बन जाएगा या करोड़पति बन जाएगा, स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो। जो वो एमबीबीएस जो मूवी थी, ये मुन्ना लाल एमबीबीएस, टेंशन नहीं लेना, बच्चे की क्रिएटिविटी को देखना। तो सप्रेस नहीं करो, एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो। म्यूजिक इसीलिए बोला, हंसना इसलिए बोला, हॉबी करो, जो चीज आपको अच्छी लगती है बचपन से वो करो। मेरे पास पिक्चर है मिस्टर पुटिन का, रशियन प्रेसिडेंट का, वो जहां कहीं जाते हैं क्या करने लग जाता है, पॉटरी बनाने लग जाता है, कंफू कराटे खेलने लगता है। लोगों ने पूछा, सर आप प्रेसिडेंट हो, आप ये क्या करते हो, पॉटरी बनाते हो और कंफू कराटे करते हो? कहता इसमें ही तो खुशी मिलती है। खुशी हमें वहां मिलती है जो हम बचपन से हॉबी करते आए। इसलिए प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने क्या कहा, आई वॉज हैप्पी वेन आई वॉज प्रोफेसर। मैं जब प्रोफेसर था तो बहुत खुश था, क्यों, बच्चों को पढ़ाता था, उसका जो मजा था वो इसमें नहीं है। इसमें क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। तो हॉबी को कभी मत छोड़िए। जो बचपन से हावी है, 7 दिन में एक बार जरूर करो, 1 महीने में एक बार जरूर करो, फैमिली को लेकर जाओ, साथ में वेकेशन मनाओ, जरूर करो। उससे ही हमारे अंदर वो इमोशन सेटल्ड होते जाते हैं। तो एक्सप्रेशन, और थर्ड इमोशन है हीलिंग के लिए एडवेंचर, नई नई चीज करना, कुछ नया करना। इसीलिए जो लोग एडवेंचर करते हैं वो भी हेल्दी ज्यादा रहते हैं। नहीं तो जो लोग कहते हैं मैं 60 साल का हो गया, रिटायर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, उन्हीं को बीमारी जल्दी आती। जो बार बार कहते हैं मैं तो अब कर लिया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, तो भगवान कहता अच्छा रिटायर्ड हो गया, बॉडी कहती रिटायर्ड हो गया, अच्छा चलो बीमारी चालू करते हैं, अब तो रिटायर्ड हो गया। इसीलिए कभी नहीं बोलना मैं रिटायर्ड हो गया, क्योंकि मैंने देखा एक आर्मी ऑफिसर्स की स्टडी में देखा, आर्मी ऑफिसर बहुत अच्छा है 56 साल तक जब वो एक्टिव है, जैसे ही रिटायर्ड हुआ उसको बीमारी चालू हो गई। क्या देखा, उसकी दोनों लड़की सेटल, लड़का सेटल, वाइफ
डॉक्टर थी वो भी रिटायर्ड हुई आर्मी से, दोनों अकेले हो गए। अब दोनों के लिए करने को कुछ नहीं, सब सेटल, लड़कियां अपने वहां, लड़का अपने यहां, अब वो करें क्या। तो विद इन वन ईयर मैंने देखा उनमें बीमारी आ गई। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं बोलना मैं रिटायर्ड हुआ। डॉक्टर बर्नी सीगल ने कहा आप लाइफ से रिटायर्ड नहीं हुए हैं, जॉब से रिटायर्ड। जब तक जिंदगी है तब तक मेरा मिशन खत्म नहीं हुआ है, तब तक कुछ ना कुछ करते रहो। और वो व्यक्ति सॉलिड रहता है जो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ करता रहता। आई एम अलाइव, इसको आजकल कहा जाता है पर्पस, मिशन ऑफ योर लाइफ। अगर आपने मिशन खत्म कर दिया, चैलेंज कुछ नहीं, खा रहे पी रहे चल रहे, वहीं का वहीं बीमारियां चालू हो। इसीलिए पर्पस को मेंटेन करके रखो। पर्पस मींस मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ मेडिटेशन मींस आप जो भी कर रहे हैं मीनिंग के साथ करिए। खा रहे हैं, क्यों खा रहा हूं, शांति से क्यों चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, मीनिंग के साथ। नहीं तो मैं देखता हूं कई आते हैं चप्पल बजाते हुए चल रहे हैं, यानी लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा, चप्पल ही बजा रहे हैं। अगर आपका अपनी चाल के ऊपर अटेंशन नहीं है तो इसका मतलब माइंड पे अटेंशन नहीं है, खालीपन है, उसी को बजा रहे हैं। अगर यहां फुलफिल है तो आपकी चाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होगी। मीनिंग के साथ हर कार्य कर रहा हूं। एक पेशेंट मुझे भी याद आया, लेडी आई थी ब्रेस्ट कैंसर की, स्टेज 4 थी। स्टेज 4 कैंसर मींस लीवर लंग में मेटास्टेसिस था। तो मेडिकल साइंस के अनुसार कोई ट्रीटमेंट नहीं, 3 महीने उसकी जिंदगी। उस लेडी ने कहा आप चिंता मत करिए, हार्ट फिक्स मास था, सर्जरी भी नहीं हो सकती थी। उस लेडी ने कहा चिंता मत करिए, मीडियम क्लास की लेडी थी, हायर ड्रग्स भी नहीं चालू कर सकते थे, सिंपल ड्रग्स चालू किए, सिंपल कीमोथेरेपी फर्स्ट लाइन। विद इन 2 साइकल्स उसका कैंसर ठीक होने लगा, लीवर मेट्स क्लियर हो गए। उस लेडी ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं मरूंगी नहीं, मेरी एक लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी मैं नहीं मरूंगी, आप चिंता मत करो, आप मुझे दवाई दो। 6 साइकिल में उसका पूरा कैंसर जो मेट्स वाला था ठीक हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, टॉयलेट सर्जरी हो गई, लेडी 3 साल जी, लड़की की शादी करा दी। जैसे ही शादी पूरी हुई फिर मेटास्टेसिस हो गया, फिर उसने शरीर छोड़ा। अब मेडिकल साइंस के अनुसार 3 महीने की जिंदगी रही, वो 3 साल। क्यों? मिशन था, पर्पस था, मुझे जिंदा रहना है, जब तक ये काम नहीं होगा मैं मरूंगी नहीं, मरूंगा नहीं। तो यही लाइफ में हमें उस मिशन को हमेशा जिंदा रखना है। रोज रोज सुबह उठकर उस मिशन को जिंदा रखेंगे तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी, और तीसरी होती है स्टबर्न पर्सनालिटी, परफेक्शनिस्ट, हर चीज परफेक्ट। ये लोग भी जल्दी बीमार होते हैं, दूसरों को टेंशन देते हैं। एक हस्बैंड को देखा, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज, अल्सर, ब्लड प्रेशर, क्या देखा उसकी वाइफ बड़ी टाइट, 8:30 खाना टेबल पे आ जाना चाहिए, नहीं आओगे खाना नहीं मिलेगा। हस्बैंड को कभी इच्छा होए संडे को खाना बनाने की, अंदर किचन में घुसने की, नॉट अलाउड, बाहर ही रहो। ये पिक्चर ऐसा ही लगना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया बच्चों की पिटाई। तो परफेक्शनिस्ट होना अच्छी चीज है, पर हम उसका इफेक्ट दूसरों को ना दें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रहते हैं, इसलिए साइकोलॉजी में कहते हैं वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शन ऑल्सो। हर आदमी छोटी छोटी गलती कभी ना कभी करता, घबरा नहीं जाए, उससे टेंस नहीं हो जाए, बच्चे की पिटाई नहीं कर दें, गलती हर कोई कर, उसको भी उस समय हम एक्सेप्ट करें, चेंज करें। परफेक्शनिस्ट होने से भी दूसरों को बहुत तकलीफ होती है, हम खुद करें पर उसका इफेक्ट दूसरों को न दें, जो मैंने कहा फ्लेक्सिबल अप्रोच बना के रखें। ये है ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी। मास्लो करके एक साइकेट्रिस्ट था, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसने एक प्रिंसिपल बनाया था कि हर व्यक्ति का अपना एक बिहेवियर पैटर्न रहता है और उसके अनुसार वो लाइफ के चैलेंजेस का सामना करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक डिमांड होती है, जैसे पहली डिमांड होती है रोटी कपड़ा मकान, दूसरी डिमांड होती है सिक्योरिटी, तीसरी होती है सोशल नीड, जो मैंने कहा एक्सप्रेशन, अब मेरे को जॉब मिल गया, मकान मिल गया, तो अब मेरी तीसरी नीड क्या चालू होगी, मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बनूं, इसका प्रेसिडेंट बनूं, सोशल नीड, ये भी मेरे को हो गई तो मेरी चौथी नीड क्या चालू हो जाएगी, फोर्थ, तीन हो गई सिक्योरिटी, एक्सप्रेशन, एडवेंचर, अब चौथी नीड आदमी की क्या चालू हो जाती, तीनों मिल जाती है तो उसके बाद उसका क्या चालू हो जाता है, ईगो नीड। ईगो नीड में यानी ज्यादातर व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति या स्पिरिचुअल व्यक्ति या रिलीजियस बिलीफ वाला व्यक्ति, अगर उसने स्पिरिचुअलिटी को ठीक से नहीं समझा है, यहां आके मार खाता है। इसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन। अब क्या हुआ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मुझे टेंशन है। एक व्यक्ति का मैं बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति बड़ा रिच है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, उसका एक दोस्त है, एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो अपने दोस्त को कहता है, यार तू बड़ा अच्छा है, तेरा जॉब कितना अच्छा, तेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चों के माता पिता आते हैं एडमिशन के लिए, हाथ पांव जोड़ते हैं, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मुझे लोग जानते ही नहीं है। कहां गड़बड़ हुई, रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन। इसलिए हमें क्या आप सीख रहे हैं यहां आके, कोई एप्रिशिएट करे या ना करे, हम अपने को एप्रिशिएट कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस का एक मेजर रीजन जो रहता है वो ये भी रहता है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन। अगर आपने बहुत अच्छा जॉब किया, काम किया, बच्चे ने बहुत अच्छा किया और माता पिता ने कुछ नहीं बोला, उसको बॉस ने कुछ नहीं बोला, तो क्या होगा, हर बार करता हूं कुछ, कोई बोलता ही नहीं मेरे को, हर बार ये कहा जाता है और अच्छा कर, ये कर, तो बच्चे की भी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डाउन होगी, डिप्रेशन में जाएगा। कुछ समय पहले एक लेडी आई मेरे पास, हाई इंटेलेक्चुअल लेडी, हाई प्रोफाइल जॉब, डिप्रेशन में गई। रीजन क्या निकला बैठने के बाद, वो बहुत एक मिलियन डॉलर की रिंग खरीदी थी उसने, उसको मिली, लाई थी, वो रिंग पार्टी में पहनकर गई। अब जैसे नेचर रहता आदमी का, अगर मैंने मिलियन डॉलर का वॉच पहना है अगर, तो मैं बार बार क्या करूंगा, बार बार रिंग पहनी है तो बार बार दिखूंगा। किसी ने पूछा नहीं मुझे पार्टी में, डिप्रेशन में चली गई। अगर किसी ने पूछ लिया होता, अरे सर कहां से लाए, बहुत अच्छी है, हमें भी मंगा के दो, मजा आ जाता, पर नहीं पूछा किसी ने। सबसे ज्यादा व्यक्ति यही मार खाता है, एप्रिसिएशन नीड, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, इसको कहते हैं। हम सभी क्या चाहते हैं, हमें कोई अप्रूव करे, पर इस 21वीं सदी में जीना है तो अब ये वाली साइकोलॉजी के चांसेस कम है। चार तरह के बिहेवियर पैटर्न रहते हैं। एक कहता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं ठीक हूं आप ठीक नहीं हैं, तो ये कौन व्यक्ति होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो, उसकी गर्दन क्या होगी हमेशा, मैं ठीक हूं, वो चलेगा भी तो ऐसे चलेगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, किसी को नहीं करेगा, इधर क्या है इधर क्या है, सीधा लिफ्ट मैन को नहीं देखेगा, सफाई वाले को नहीं देखेगा, सीधा चला जाएगा। दूसरा क्या होता है, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, उसकी गर्दन कैसी होगी, ऐसे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिफेंसिव, इनसिक्योरिटी, लोगों से नहीं मिलेगा, भीड़ में नहीं जाएगा, उसके कहेंगे अंकल को गुड मॉर्निंग करो, नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, उसकी गर्दन ऐसी, इसकी गर्दन ऐसी, तो जब वो भगवान से मिलने जाते हैं, एक ऐसा, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है, एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा, इनको चाहिए क्या मालूम नहीं, इसीलिए प्रेयर होती नहीं। इसीलिए पहले के मंदिर कैसे बनाए गए, वैष्णो देवी जाओ तो आप कैसे जाओगे वैष्णो देवी में, किसको झुकाना पड़ता है, ईगो को, गर्दन को। तभी थर्ड पर्सनैलिटी होती है, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो उसकी गर्दन कैसी होगी, नॉर्मल होगी, हाथ खुले रहेंगे, मैं ठीक हूं आप भी ठीक हैं, बिल्कुल उसका अलाइनमेंट ठीक होगा। अगर यूं रहेगा तो आर्थराइटिस और स्पॉन्डोलाइटिस के चांसेस जल्दी आएंगे, इसीलिए नॉर्मल। चौथा है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग इज ओके, और यही लोग गड़बड़ करते हैं। एंटी सोशल एक्टिविटी, क्राइम, सेक्स, वायलेंस, रेप, ये व्यक्ति ही करता है। कहीं ना कहीं वो अंदर से खुश नहीं है, तो देखा मारा, जानवर वाली प्रवृत्ति जिसको कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट, उसका हायर ब्रेन काम नहीं करता, लोअर ब्रेन ही काम करता है, देखा और किया। और जो अभी आजकल हम यंगस्टर्स में, बड़ों में भी देख रहे हैं, इंस्टेंट सेक्सुअल इंस्टिंक्ट क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका लोअर ब्रेन ही काम कर रहा है, देखा और मारा, जो एनिमल का नेचर रहता है, क्योंकि वो हायर जा ही नहीं पाता। तो इसीलिए ये लास्ट रहती है व्यक्ति की, इसको क्रॉस कर लेता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन पे जाता है, और यहां अटका रहता है तो वहीं वो मात खाता रहता है। इसलिए आजकल मैं कहता हूं, आपको कोई अप्रिशिएट ना करे, दूसरों से लेने की कोशिश मत करो, कोई मुझे अप्रूव करो, मेरे पास भी कई आती है, कई लोग आते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं समझ जाता हूं कहीं ना कहीं इसको वो चाहिए, मैं यही करता हूं, गुड गुड, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बस इतना करता हूं, वो खड़ा, हाँ हाँ, अप्रूवल, गुड गुड, ओके ओके ओके, वो करेगा, करो, एज ए लीडर यू हैव टू डू इट। अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, आप अपने वर्कर के पास जाओ, बच्चों के पास जाओ, यस बच्चा नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस दिलाओ, तो वो करेगा, बच्चा वो स्टेज को क्रॉस कर देगा। नहीं करोगे तो वो वहीं का वहीं स्टकअप हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, वो टफ बनना है, अप्रूवल नहीं लेना। अब चौथा है, रात को सोने के पहले, अभी अपन एक्सरसाइज करते हैं, आप भी अपना राइट हैंड लीजिए, अपना शोल्डर खुद थपथपाइए, आहा क्या ब्यूटीफुल हो आप लोग, कितने अच्छे सुंदर कलाकार हो। कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाए तो मैं तो थपथपा सकता हूं अपनी, ये थपथपाओगे, मेरे जैसा सुंदर कलाकार कोई नहीं। आपने पहला लेसन सीखा ना, आई एम ए यूनिक एंड ब्यूटीफुल एक्टर, मैं क्या हूं, पहला लेसन आपने क्या सीखा, केवल ये नहीं कि मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ये नहीं, आई एम यूनिक ब्यूटीफुल एक्टर, मेरे जैसा सुंदर कलाकार कोई नहीं। तो रात को सोने के पहले क्या करें, आ प्रेम तूने क्या जोरदार काम किया। तो ये शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर कब होता है, जब मेरे को चाहिए कोई करे, कोई करे, अरे नहीं करे कोई बात नहीं, अपन तो कर सकते हैं, तो फ्रोजन शोल्डर ये नहीं हुआ। अप्रूव यूर सेल्फ, एक्सेप्ट यूर सेल्फ, एक्सेप्ट यूर सेल्फ एज सच, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा सुंदर, बालों का स्ट्रक्चर जेनेटिकली दुनिया में किसी से नहीं मिलता, तो मैं बिल गेट से और श्रीदेवी से क्यों कंपैरिजन करूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जो हूं अच्छा कलर दिया, जो दिया अच्छा दियागा, नहीं तो इसका भी टेंशन आ जाता है। रीडर डाइजेस्ट में एक जोक आया था, आपकी कार की वैल्यू कम हो जाती है, योर कार डिप्रिशिएट फास्टर व्हेन योर नेबर गॉट ए न्यू मॉडल, जब आपके पड़ोसी के पास नया मॉडल आ गया टेंशन चालू हो गया, अरे मेरे पास मारुति है, लेट मी एंजॉय मारुति, जब और आएगी तो मैं और इंजॉय करूंगा। तो एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट योर ओन वर्थ, भगवान ने मुझे खास मकसद के लिए भेजा है, उस मकसद को पूरा करें। कोई अच्छा गाना बजा रहे हैं क्या, चलो आगे।
रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
कभी भी रोने वाले गाने नहीं गाना, नहीं तो डिप्रेशन में रोने वाले गाना चालू कर दिया, कटी पतंग का, मेरी जिंदगी क्या है, कटी पतंग है, और डाउन हो गए। उस समय कुछ अच्छे गाने गाइए। अब आते हैं, हमारा मस्तिष्क में भी ऐसे ही दो मैकेनिज्म है। कोई भी घटना को जब हम देखते हैं, हमारे में थोड़ा डर आता है, हम उस घटना से लड़ते हैं या भागते हैं। इसको फिजियोलॉजी में कहा फाइट और फ्लाइट। अब ये देखिए बॉडी लैंग्वेज, टाइट, रिएक्टिव। अब इसका असर क्या आएगा, एक पॉइंट लूज किया और मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा हुआ। ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड है। नेक्स्ट, अब मेरी पर्सनालिटी अगर टाइप ए है तो देखिए चेंज आना चालू हो गया स्पाइनल कॉर्ड में। हर बार फास्ट, ऐसा ही होना चाहिए, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी चेंज आया। जो मैं बोल रहा था स्पॉन्डोलाइटिस, आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, लाइफ पूरी आउट ऑफ कंट्रोल की तरह जी रहे हैं। नेक्स्ट, ओवर डिफेंस पेरेंट्स, जो माता पिता पूरा डिफेंस करने की कोशिश करते हैं बच्चे को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसके पीछे पीछे जाएंगे कार में, उसको भी कार लेके दिए उसके पीछे पीछे जाएंगे कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जब तक स्कूल नहीं पहुंच जाए, एक मोबाइल उसको भी ले देंगे, हर 15 मिनट में फोन जा रहा है, तो ओवर डिफेंस पेरेंट। और ये चेंजेस आना चालू होते हैं, अगर हमारा ये कंटिन्यूस बना रहता है तो चेंजेस आते हैं और बीमारी का पूरा मॉडल जो आज का है वो आ जाता है। जेनेटिक फैक्टर, पर्सनालिटी फैक्टर, स्ट्रेसर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, सब मिला के बीमारी को बनाते हैं। हार्ट डिजीज इसीलिए एक मेजर थ्रेट बनती जा रही है, जिसमें स्ट्रेस एक मेजर है। इसको डिटेल डॉक्टर गुप्ता कवर करेंगे। आजकल एक नई बीमारी चालू हो गई है, स्कैम एंजाइना। स्कैम एंजाइना में पेशेंट गया, डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है, कहता है सब कुछ ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ये कॉमन हो गया, जब कभी भी सीबीआई रेड डालती है, स्कैम होता है, हमारे पास इस तरह के मरीज बहुत आते हैं जिसको आजकल कहते हैं एंजाइना। अब जो मेजर प्रिंसिपल है ये क्लियर हो जाएगा तो आपको मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। हर व्यक्ति अपनी एक कंफर्ट जोन बनाता है और उसी के अनुसार वो जीने की कोशिश करता है। अगर मेरी +2 है, -2 है, तो मैं +2 -2 के बीच में अच्छा रहूंगा। पर कभी भी मेरे सामने कोई सिचुएशन +6 की आ गई तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। कभी भी -4 की आ गई तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाना है। टूवर्ड सक्सेस, टूवर्ड फेल्यूअर। टूवर्ड सक्सेस कैसे बढ़ाएंगे, डेली एक्सरसाइज से। अगर मेरी हार्ट बीट 60-70 है तो मैं क्या करूंगा, रोज अब वॉक करूंगा, अच्छी वॉकिंग करके मैं इसकी कैपेसिटी को रोज हार्ट बीट को 110-120 तक ले जाऊंगा। एक फॉर्मूला है, जिनको लिखना है लिखें, 220 माइनस योर एज मल्टीप्लाई बाय 0.6 to 0.8, मीन 60% और 80% ऑफ दैट इज कॉल्ड टारगेट हार्ट रेट। आपने 220 में से अपनी उम्र को कम करिए, योर एज, उसको मल्टीप्लाई करिए। अगर कभी भी आपने वॉकिंग नहीं किया है तो 0.6 से 60% ऑफ दैट, और अगर बहुत अच्छा वॉकिंग करते आए हैं तो 0.8 से। तो वो जो हार्ट रेट आएगी, जैसे 220 में से 60 माइनस किए एज, तो 160 का 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो भी वो आएगा वो आपका टारगेट हार्ट रेट आएगा। तो आपको क्या करना है, सुबह वॉक शुरू करिए, धीरे धीरे अपने को स्ट्रेच करिए और अपनी हार्ट बीट को वहां तक ले जाइए, 96 है, 110 है, जितनी भी आई है, धीरे धीरे उस 108, 110 को मेंटेन करिए, उसी स्पीड से चलते रहिए। मॉडरेट वॉक, ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर वी इंडियंस। अच्छा ब्रिस्क वॉक उसी स्पीड पे करिए, 108 जो भी आपका टारगेट हार्ट रेट है, कम से कम 25-30 मिनट तक इसको मेंटेन करिए। अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किडनी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप मेंटेन करिए उसको। तो क्या होगा, आपका हार्ट 110 120 तक जाना सीख जाएगा। अब जब कभी भी लाइफ में सिचुएशन आएगी और ये 120 तक जाएगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको पहले से ट्रेन कर दिया है 120 तक, तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा 120 पे भी। पर मैंने इसको ट्रेंड ही नहीं किया और ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं, ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूं सामान के साथ, ये 120 तक चला गया, तो एंजाइना या हार्ट अटैक क्यों होते हैं, सडन क्यों होते हैं, एकदम हार्ट बीट ऊपर गई और हार्ट अटैक। पर आपने उसको सिखा दिया, ट्रेन कर दिया धीरे 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 धीरे, तो वो सीख गया 120 तक जाना। तो अब 120 तक गया भी तो मैं आराम से खड़ा हूं, आई एम कंफर्टेबल इवन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी टूवर्ड्स पीक। दूसरा है फेल्यूअर। आदमी दूसरी जगह मात खाता है फेल्यूअर में भी, हार्ट अटैक दोनों में हो सकते हैं। जैसे मेरे को बहुत लॉटरी मिली किसी व्यक्ति को, और अगर उसने बहुत खुशी एकदम ले ली तो ज्यादा खुशी से भी हार्ट अटैक हो जाता है। आपने देखा ब्राजील, ब्राजील ने वर्ल्ड कप मैच जीता तो 6 लोगों को हार्ट अटैक हो गया। क्यों हुआ, यंग लड़कों को, मैच जीता है फिर भी हार्ट अटैक, क्योंकि ये जो कोरोनरी है आर्टरी, माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता है रियल क्या है अनरियल क्या है। आपने ओवर इमोशनल हो गए, एक्साइटेड हो गए, तो हार्ट अटैक हो गया। अब दूसरी सिचुएशन में बहुत डर लग रहा है, बहुत खबर आई, सडनली आपकी हार्ट बीट 40 पे चली गई, डर में क्या होता है खून यहां इकट्ठा हो जाता है और सडन हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आप रिलैक्स, हार्ट बीट को कम करते 40-50। तो जब मेरी हार्ट बीट 50-40 पे ट्रेन कर दूंगा मेडिटेशन से, तो जब सिचुएशन आएगी डर वाली, हार्ट बीट 50 पे भी गई तो आई एम कंफर्टेबल। दिस इज द वे यू कैन एक्सपांड योर सेल्फ इमेज कंफर्ट जोन, सो दैट यू आर कंफर्ट इवन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आपको एक जोक देता हूं, एक व्यक्ति को हार्ट डिजीज थी, उसको 1 करोड़ की लॉटरी मिली, तो लोगों ने सोचा इसको खबर दे देंगे तो इसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसके कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा मैं खबर देता हूं। कार्डियोलॉजिस्ट बैठ गया, तेरे को 20,000 मिले तो क्या करेगा। धीरे धीरे खबर को उसने चालू किया, मैं मकान ले लूंगा, ये कर लूंगा, 40 लाख मिले तो क्या करूंगा, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, 80 लाख मिले तो बच्चों के लिए ले लूंगा। जब आधे घंटे बाद बोला 1 करोड़ मिले तो क्या करेगा, अब इस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आ रहा था, कभी कहता 30 लाख 40 लाख, पैसा तो मिल नहीं रहा, ऐसे ही बोलते जा रहा है। तो उसने गुस्से में कहा आधा तुझे दे दूंगा। हार्ट अटैक कार्डियोलॉजिस्ट को हो गया। ये होता है टूवर्ड्स सक्सेस सडन। इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आजकल इसको कहते हैं EQ, EQ means emotional quotient। आजकल कहते हैं IQ contribute 20% of success, EQ contribute 80% of success। और आजकल job interviews में सबसे पहले criteria लेते हैं emotional stability। कैसे ये leader हमारे problem को solve करेगा। Time क्योंकि हो गया है, बंद कर दो। तो एक last
एटीट्यूड। एक दूसरा जो लास्ट मैनेजमेंट बताते हैं वो है एटीट्यूड। कहते हैं तनाव इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट। जिसको कहा जाता है योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। आप किस दुनिया में कहां जाना चाहते हैं आपके एटीट्यूड यानी हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड कर। तो एक व्यक्ति बहुत अमीर था, उसका लड़का एक था। तो इस अमीर ने सोचा कि मैं इस लड़के को भेजता हूं एक गरीब के यहां, इसको पता लगे गरीबी क्या होती है। तो उसने एक रात बिताने के लिए गरीब के यहां भेजा। वो रात भर उसके यहां रहा। सुबह आया, उसके पिताजी ने पूछा तुझे अब पता लग गया होगा गरीबी क्या होती है, व्हाट इज पॉवर्टी। तो इस लड़के ने कहा पिताजी अपने पास स्विमिंग पूल इतना बड़ा है, मैंने इनके गांव में देखा बहुत बड़ी नदी थी, अपने पास दो कुत्ते हैं अमेरिका से लाए थे, इनके गांव में तो 20 कुत्ते घूम रहे थे, हमारे पास दो इम्पोर्टेड लाइट थी इनकी, मैं जब सोया गांव में तो ऊपर देखा चंद्रमा सितारे बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई थी, आज मुझे पता लगा मैं कितना गरीब हूं। दिस इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। इसीलिए लाइफ में क्या करना है, हमेशा अपने एटीट्यूड को अच्छा रखो, चाहे नेगेटिव है उसको चेंज कर दो। कोई भी सिचुएशन आए सोचो इस घटना में मैं क्या कर सकता हूं। जैसे एक हस्बैंड इलेक्शन लड़ रहा था रोटरी क्लब का, रोटरी क्लब से तो कोई नहीं है, हैं? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का लड़ रहा था, तो इलेक्शन हार गया, घर आया बड़ी चिंता में आया, बड़ा दुखी सा बैठ गया। उसकी वाइफ ने कहा दुखी क्यों हो, आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ रहे वहां क्लब में, घर में तो आप वाइस प्रेसिडेंट ही हो, मैं प्रेसिडेंट हूं। तो कन्वर्ट योर नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। जीवन में हर सिचुएशन आती, एक लेडी कुछ महीने पहले आई थी, उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया कोलिस। तो हमने पूछा कैसा लग रहा है आपको, बोली बड़ा अच्छा लग रहा है, हाथ का फ्रैक्चर हुआ, पांव का थोड़े हुआ, पट्टा लगा दिया, घूम रही हूं, बात कर रही हूं, पर सबसे अच्छा फायदा ये हुआ अब घर जाके मुझे 3 हफ्ते काम नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान ने मुझे रेस्ट दे दिया। इसलिए जब हॉस्पिटल जाने का मौका मिले खुशी खुशी जाओ, सर्जरी करानी म्यूजिक लेके जाओ, अच्छा कैसेट लेके जाओ, डॉक्टर को भी सुनाओ। हाँ, ओ हमको हमारे बाबा, हमको हमारे बाबा, वो वाला लास्ट सुना के। एक बहुत अच्छा गीत है जो मुझे अच्छा लगता है, हमारे इसमें से ही है, आपने सुना नहीं सुना, पर इसमें बहुत अच्छा मीनिंग है डीप, और इसी के साथ अपन मेडिटेशन करेंगे। फिर एक मिनट, इसके पहले सब सोप दो। तो पहले अभी बैठ जाते हैं अपन, हाथ खाली छोड़ दें, ब्रीद इन एंड आउट, सांस अंदर और बाहर करना आराम से, छोड़ते जाना सब तरफ से ध्यान हटाकर, चेतना शक्ति को दो आंखों के बीच फोकस करें, यहां पर मैं अपने कमरे में विराजमान हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, दो आंखों के बीच इस पूरे शरीर को संचालन कर रहा हूं। अनुभव करिए पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। अब अपने अंदर की सभी कमजोरी, डर, चिंताएं परमात्मा को देते जाएं, सौंप दें, सब कुछ सौंप दो, अपने को अंदर से बिल्कुल खाली कर दो। रिलीज कर दो, लेट गो करो। अब इसी ऊर्जा शक्ति को शरीर के सभी सेल्स में जाने दें। इमेजिन करें, फील करें पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग वाइब्रेशन शरीर के हर कोशिका में जा रहे हैं। ऑल ऑर्गन्स आर रिसीविंग हीलिंग वाइब्रेशन। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, कोरोनरीज आर ओपन, ब्लड शुगर इज नॉर्मल। पूरा शरीर स्वस्थ है। पूरे सेल्स में हीलिंग हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। वापस दो आंखों के बीच फोकस करें। और पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, करो भला। पूरे वर्ल्ड में देते जाएं। हील करते जाएं, वाइब्रेशन देते जाएं। वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आ जाएं। ब्रीद इन एंड आउट 3 times। अपने को ढीला कर दें,
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से।
नॉर्मल आ जाएं तो ये प्रैक्टिस आपने देखी, ऊपर ले गए फिर नीचे लिया है। एक्सरसाइज करिए, हंसिए, गाना गाइए, ऊपर ले गए फिर एकदम अपने को ढीला छोड़कर विड्रॉ करके शरीर को रिलैक्स कर दें। जब हम एक्सटर्नल एक्टिविटी करते हैं, कोई चीज अच्छी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, इनकैफेलिन्स लेवल बढ़ती है, और जैसे जैसे हम बॉडी को ढीला छोड़ते जाते हैं तो बॉडी में रिपेयर चालू हो जाती है। ये प्रैक्टिस हमारी धीरे धीरे इतनी नेचुरल हो जाए, जब चाहूं मैं अपने पांच इंद्रियों को समेट कर अपने सेंट्रल रूम में बैठ जाऊं शांत होकर, तो ये अर्जुन पांच इंद्रियां अपना फोकस तीर ठीक से चलाएंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे अंदर ही है। जितना श्री कृष्ण मास्टर होता जाएगा, पांच कर्म इंद्रियां मेरे कमांड, अर्जुन मेरे कमांड में आ जाएगा और मेरा पेनिट्रेशन पावरफुल होता जाएगा। यही हमें दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है और लाइफ में बैलेंस रखना है। आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, जरूर करिए, नहीं छोड़ना है, पर मन और बुद्धि को मुझे एकाग्र करके उस कार्य को और सक्सेसफुल बनाना है। हर दिन अगर मैं इम्प्रूव करते जाऊंगा तो एक दिन मैं उसमें डेफिनेटली मास्टर बन जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।